नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्परता, शांति रक्षक अभियानों को व्यवस्थित करने और मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक शासन में सुधार को लेकर बातचीत की। उन्होंने ऊर्जा चुनौतियों, उर्वरक आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा को लेकर ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को विशेष रूप से उठाया। विदेश मंत्री G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी करने के लिए फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। सरकार ने कहा है कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित ऊर्जा क्षमता है। कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और LPG की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या LPG की कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारतीय जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। इस बीच हजारों अमरीकी सैनिक क्षेत्र के करीब पहुंच गए हैं। उधर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरी तरफ इसराइल ने हिजबुल्ला से लड़ने के लिए दक्षिणी लेबनान में और अधिक सैनिक तैनात किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के वैश्विक परिणाम कोविड महामारी की तरह विनाशकारी हो सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कल मॉस्को में कहा कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से भड़के संघर्ष ने कई उद्योगों को संकट में डाल दिया है। मौजूदा संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय रसद, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के नेता बालेंद्र शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में होगा। बालेंद्र शाह कल RSP संसदीय दल के नेता चुने गए। उनकी पार्टी ने 5 मार्च को हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। 35 वर्षीय रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह देश में सर्वोच्च कार्यकारी पद संभालने वाले मधेस क्षेत्र के पहले व्यक्ति भी होंगे। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन कल कुल 117 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए। कुल 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2125 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 1651 स्वीकार किए गए। वहीं जांच के दौरान 357 नामांकन रद्द कर दिए गए। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न हिस्सों में प्रचार गतिविधियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी का पर्व आज श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। रामनवमी का मुख्य आकर्षण अयोध्या है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सूर्य स्नान होगा। दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
अयोध्या के 5,000 से अधिक मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह भगवान राम के अभिषेक के बाद ठीक दोपहर 12 बजे गर्भगृह में सूर्य तिलक होगा, जब सूर्य की किरणें लगभग 4 मिनट तक रामलला के माथे पर पड़ेंगी। ये एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके बाद 56 भोग प्रसाद चढ़ाए जाएंगे। आज शाम चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 22 लाख दिए जलाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ U20 चैंपियनशिप में कल वर्तमान चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में कल ग्रुप बी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्लेऑफ के आयोजन स्थलों की जानकारी बाद में साझा की जाएगी। दूसरे चरण में 12 शहरों में 50 मैच खेले जाएंगे। इनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।